शांति। सुबह उठकर सबसे पहले पिता परमात्मा की याद आए, उनसे मिलन मनाए, उनसे हम बातचीत करते हैं तो हमारा मन भी ठीक हो जाता है। और जब मन ठीक है तो मुख भी मधुर बन जाता है, जो भी बोल आप बोलेंगे फिर मीठे प्यार भरे बोलेंगे। प्रथम सत्र में हम सब आपस में मिले थे और आज त्रिदिवसीय सम्मेलन के अंत में फिर से मिल रहे हैं। आज आप सभी वापस अपने अपने कर्म क्षेत्र पर जाएंगे तो अपने आप को आध्यात्मिक रूप से भी तैयार करके जाना है। इस बात से तो अब आप सहमत होंगे ही कि जीवन में कदम कदम पर हमें आध्यात्मिकता की और परमात्मा से योग लगाने की अति आवश्यकता है। लगता है ऐसा आपको? हाँ, आवश्यकता लग रही है। हाँ, क्योंकि हम एम्पावर होंगे तो हम अपना हर कार्य अच्छी रीति से कर सकेंगे। तो एक परिवर्तन, एक नवीनता स्वयं में लेकर के जाना है। हम चीजें बदलते हैं, अपने कार्य क्षेत्र के सेटअप को चेंज करते हैं, सिस्टम बदलते हैं, लेकिन यहां जो बात हम कर रहे हैं वो स्वयं में नवीनता लाने की। हर व्यक्ति कोई ना कोई लिमिट में फंसा हुआ है कि ये मेरी लिमिटेशन है, बहुत जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं घबरा जाता हूँ, मैं जल्दबाजी में निर्णय कर लेता हूँ, मेरा बोलना ऐसा है। तो ये कुछ ना कुछ लिमिटेशन हम सबके अंदर है। उस लिमिटेशन को ब्रेक करना है और अपना एक नया स्वस्थ संतुलित स्वरूप हमें कार्य क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में प्रस्तुत करना है। तो आज का जो हमारा विषय है, स्पिरिचुअल मेटामॉर्फोसिस, स्वयं को बदलना। जैसे एक कीड़ा सुंदर तितली में परिवर्तन होता है, या कीचड़ से ही कमल उगता है, इस प्रकार से हम मनुष्यात्माओं को भी स्वयं के अंदर वो सुंदरता, वो दिव्यता, वो महानता धारण कर रही है। हमारी बड़ी दादी जी सदा मेहमानों को कहती थी कि मेहमान बन के आए हैं, महान बन के जाना है। तो कैसे हमें एबनॉर्मल से नॉर्मल और नॉर्मल से सुपर नॉर्मल बनना है, इसी को हम शास्त्रों की भाषा में कहें तो असुर से मानव और मानव से देवता कैसे हमें बनना है। अब आपको स्पष्ट है कि स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, नर्क कोई पाताल में नहीं है, देवताएं कोई काल्पनिक या चमत्कारिक नहीं है और असुर कोई अलग योनि के प्राणी नहीं है, परंतु हम मनुष्य आत्माएं ही जब संपूर्ण पवित्र और सद्गुणों से संपन्न होते हैं तो हम ही देवता कहे जाते हैं और तब संसार स्वर्ग होता है। जब हम अपनी वो पवित्रता और दिव्यता को गंवा देते हैं तो हम साधारण मनुष्य आत्मा बन जाते हैं और देह अभिमान में आकर जब हम विषय वासनाओं के वशीभूत होते हैं, अनेक प्रकार के अवगुण बुराइयां कमजोरियों के वशीभूत हो जाते हैं तो हम ही असुर जैसे बन जाते हैं। तो असुर कोई भयानक बड़ी बड़ी आंख वाले दांत वाले सिंग वाले कोई प्राणी नहीं है, परंतु हम ही जब गुस्सा करते हैं अहम में आते हैं आपसी वैर और द्वेष में आते हैं उस समय अगर हम अपना चेहरा आईने में देखें तो उस समय हम कैसे दिखते हैं? हम ही असुर जैसे दिखते हैं। पर व्यक्ति की वृत्ति में जो गुस्सा है अहम है द्वेष है वो अगर चित्र में दिखाना हो तो चित्र कैसा बनाएंगे? वही भयानक सूरत वाला चेहरा बनाएंगे ना? पर है वास्तव में हमारी आंतरिक वृत्ति में संस्कारों में आदतों में जो विकृतियां हैं या नकारात्मकता है उसे ही बाह्य चेहरे में एक भयानक स्वरूप के रूप में दिखाया गया है। तो परिवर्तन हर क्षेत्र में आता रहता है, परिवर्तन संसार का नियम है। क्षण क्षण हर चीज हर आत्मा और उसके आधार पर दुनिया का स्वरूप और स्थितियां बदलती रहती हैं। पर आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक आमूल परिवर्तन की है, एक रूट से चेंज की है। तो स्पिरिचुअल माना क्या? जैसे फिजिकल माना अबाउट फिजिक्स, भौतिकता के संबंध में जो ज्ञान या बातें हम करते हैं तो हम उसको फिजिकल या वर्ल्डली बॉडी कॉन्शियसली इस प्रकार के शब्दों को यूज करते हैं और मैटर से जो भी चीजें बनती हैं उनको हम मटेरियल कहते हैं। तो इसी प्रकार जो स्पिरिचुअल शब्द है आध्यात्मिक माना ही स्पिरिट के बारे में, चैतन्य शक्ति आत्मा के बारे में, अधिक ज्ञान को हम आध्यात्मिक कहते हैं। आध्यात्मिक शब्द का संधि विच्छेद अगर हम करें तो अधि प्लस आत्मिक, आत्मा के बारे में अधिक ज्ञान, उसको हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। क्योंकि शरीर स्थूल है, बाह्य है, देखने में आता है तो उसके बारे में हम काफी खोजबीन करते हैं और पूरा ज्ञान उसके बारे में प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन प्रथम जो मेडिटेशन का प्रथम लेक्चर हुआ सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें इस सत्य को आपने समझ लिया कि शरीर तत्व से बना है, शरीर एक मटेरियल है, पर मैं शरीर से अलग हूँ, चैतन्य हूँ, एक शक्ति हूँ। तो आत्मा के बारे में अधिक ज्ञान को ही आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। उसे आप सोल कहिए, साइकी कहिए, स्पिरिचुअल एनर्जी कहिए, लिविंग एंटिटी कहिए, इनर पावर कहिए, वो सरल शब्द है उसके लिए आत्मा। मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। जब इस सत्य को हम समझ लेते हैं तो ऑटोमेटिक जो मटेरियल है, वर्ल्डली जो बातें हैं, उसके आकर्षण से हम अपने आप को डिटैच कर सकते हैं। अब तक हम अपने आप को शरीर समझते रहे, शरीर भान में रहे, और शारीरिक परिचय से ही हम अपने आप को भी आइडेंटिफाई करते रहे, परंतु इस प्रथम सत्य को जब हम समझ लेते हैं कि जो दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूँ, मैं इसको धारण करने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ जो अति सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु है। तो आत्मा के बारे में अधिक ज्ञान आप सब ने प्राप्त कर लिया है। तो आत्मा की जो मुख्य शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, उसमें परिवर्तन की बात है या उसके रूपांतरण की बात है, क्योंकि जो हमारी चैतन्यता है, विचार, इच्छाएं, भावनाएं, स्मृति, कर्म, अनुभव, ये सभी आत्मा से संबंधित हैं। तो हमें स्वयं का रूपांतरण करना है। हम मैटर को चीजों में बदलते हैं, चीजों को क्वालिटी बनाते हैं, माइक्रो बनाते हैं, कॉम्पैक्ट बनाते हैं, इस प्रकार हम चीजों में तो परिवर्तन ला रहे हैं, लेकिन मुख्य हम स्वयं हैं और स्वयं के विचार, वृत्ति, भाव, भावनाएं, संस्कार, आदतें, इन सब के अंदर हमें इस ज्ञान और योग की शक्ति से परिवर्तन करना है। तो ये एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, आमूल परिवर्तन, रूट से चेंज हमें अपने आप में लाना है। ट्रांजिशनल चेंज तो हम करते रहते हैं, कोई बात ऐसी आती है, परिस्थिति आती है, तो टेम्पररी हम अपने आप को बदल लेते हैं, परंतु जड़ों से खुद को बदलना, अपने संस्कारों में, आदतों में, वृत्तियों में परिवर्तन करना है, जिसको हम कहते हैं कि रूट से चेंज करना है। तो एक परमानेंट और इफेक्टिव चेंज हम अपने जीवन में ला सकते हैं। हर एक को चेंज पसंद आता है ना, रोज रोटी खाते रहना अच्छा नहीं लगता है, चेंज करते हैं तो अच्छा लगता है, कपड़े भी चेंज करते रहते हैं, चीजों में भी घर का जो इंटीरियर डेकोरेशन है या सेटअप है, उसको भी आगे पीछे करके हम चेंज करते रहते हैं। तो हर आत्मा को चेंज पसंद आता है, परंतु खुद में चेंज करना पसंद आएगा? वो पसंद कर रहे हैं, है ना। अक्सर कुछ भी होता है तो हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं कि ये व्यक्ति सुधर जाए तो मेरा काम आसान हो जाए, हमारी टीम में ये ठीक नहीं है उसको चेंज कर दें तो सब ठीक हो जाएगा। तो हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, पर यहां है खुद में परिवर्तन। तो जब खुद में चेंज लाते हैं तो हमारी दुनिया नई बन जाती है। तो ये हम अपना आंतरिक मैकेनिज्म समझ ले कि हमारी इनर पर्सनालिटी कैसे फॉर्मेट होती है। तो इसमें बताया है कि इन्फॉर्मेशंस जो भी हमें प्राप्त होती है कर्मेंद्रियों से, ये आंख, कान, मुख, ये हाथ पांव, नाक, ये जो भी है कर्मेंद्रियां हैं, और इसको हम ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं, क्योंकि इन इंद्रियों के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलता है, राइट चाहे रॉन्ग, पर जो इनपुट होता है वो इन कर्मेंद्रियों के माध्यम से होता है। हम जो कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, वो हमारी स्मृति मेमोरीज में जाकर के स्टोर होता है। कई बार हम कहते हैं कि भाई हम तो बात सुनते हैं पर एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, पर क्या वास्तव में वो निकलता है? हाँ, नहीं। जो भी हम बातें सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, वो हमारी मेमोरीज में जाकर के स्टोर होता है। इसलिए जैसी हमारी स्मृति ऐसी मनोस्थिति का निर्माण होता जाता है। बार 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 सोचते रहने से या वही स्मृति में रहने से वो दृढ़ हो जाती हैं और उसके आधार पर हमारी मनोस्थिति बनती जाती है। फिर जैसी मनोस्थिति बनती है उसी के आधार पर हमारी वृत्ति का निर्माण होता जाता है। जो चीज हम बार बार सोचते रहते हैं वो हमारी मेंटल स्टेट क्रिएट करते हैं और हमारी मनोवृत्ति का निर्माण होता जाता है। और जैसी हमारी मनोवृत्ति जिसके प्रति हम उसको उसी नजर से देखते हैं तो वैसी हमारी दृष्टि डेवलप होती है। फिर उनके साथ हमारा कर्म व्यवहार भी ऐसा ही रहता है। जो संस्कार पर्सनालिटी ट्रेट्स बनता है और अगेन वो हमारी स्मृति को और एम्पावर कर देता है। मान लो आप रास्ते से जा रहे हैं और आपके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी चल रहा है और अचानक एक कुत्ता आकर उससे काटता है, बहुत खून निकलता है और आप दो तीन व्यक्ति उसको ऑटो रिक्शा में डालकर हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। ये जो दृश्य आपकी मेमोरी में स्टोर हुआ, अब आप अपने फ्रेंड के घर गए हैं और वहां गेट पर लिखा है कुत्ते से सावधान रहिए। और वहां उस कुत्ते को देखकर अब आपकी उसके प्रति क्या वृत्ति रहेगी? या तो आपको भय लगेगा या आप उसको मारने और भगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके प्रति आपकी दृष्टि भी नकारात्मक रहेगी। आपका फ्रेंड कहता है कि ये पालतू कुत्ता है, ये नहीं काटता है, पर तो भी हम क्या कहते हैं कि नहीं, आप उसको पहले पकड़ लो, बांध लो, फिर मैं अंदर आऊंगी। तो हमारा उसके प्रति व्यवहार भी दूर दूर का रहेगा और नेचुरली वो संस्कार में आ जाता है कि जब भी उस कुत्ते को देखेंगे, कोई भी कुत्ते को देखेंगे, तो आपको कौन सी वो मेमोरी फिर से स्ट्राइक होंगी कि कहीं ये काट न ले। तो एक इंफॉर्मेशन जो अंदर जाती है वो कैसे हमारी मनोस्थिति, वृत्ति, दृष्टि, कृति, प्रवृत्ति और पर्सनालिटी का, वो हमारी दुनिया का निर्माण करते हैं। अब आप देखिए कि अगर सारे एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन इनर साइकिल को पूरा नेगेटिव बना देगा और एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जो अंदर जाएगी वो हमारी अंदर के इस साइकिल को पॉजिटिव बनाते हैं। तो अब आप देखिए अपनी दिनचर्या में कि सुबह उठते हैं तब से लेकर रात को सोते हैं तब तक कितनी इंफॉर्मेशंस हमारी मेमोरी में जाते हैं और मेजोरिटी वो इंफॉर्मेशन कैसी होती है, चाहे वो टीवी के द्वारा प्राप्त हो, न्यूज पेपर के द्वारा प्राप्त हो, या आपस में बातों से प्राप्त हो, या जो हम समाज और संसार में देखते हैं, तो मेजोरिटी इंफॉर्मेशन कैसी होती, नेगेटिव होती है। एक इंफॉर्मेशन पूरे साइकिल को नेगेटिव बना सकती है और सारा दिन जो इनपुट हो रहा है कॉन्स्टेंट, वो अधिकतर नेगेटिव इंफॉर्मेशन है। इसलिए दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि हमारा व्यक्तित्व नकारात्मक ज्यादा बनता जा रहा है। तो इसलिए इस विश्वविद्यालय में हमें ये सिखाया जाता है और ये हमारा एक रूटीन फिक्स किया हुआ है कि दुनिया में हम रहेंगे तो नेचुरली जिएंगे, तो आंखें खोल के रहेंगे, कोई आंखें बंद करके तो नहीं जिएंगे, है ना। देखेंगे, सुनेंगे, इन्फॉर्मेशंस तो अंदर जाएंगी है और वो अपना प्रभाव तो डालेगी है। इसलिए अगर फर्स्ट इनपुट अर्ली मॉर्निंग हम क्वालिटी देते हैं तो फिर दिन भर जो भी बातें दिखाई दें, सुनाई दें, तो उनका नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट इनपुट क्वालिटी और पावरफुल हम डालें। इसलिए हमारी दिनचर्या इस प्रकार की है कि सुबह 4 से 5 बजे हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं और सबसे पहले हम उस पिता परमात्मा से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जो पिता सत्य है, कल्याणकारी है, सदा पावन है। हम कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा सत्य है, शिव कल्याणकारी है, सुंदर सदा पावन है। तो अगर हमारा अर्ली मॉर्निंग जब हम आराम करके उठते हैं हमारी मेमोरीज भी फ्रेश होती है, उस समय जो इनपुट हम देते हैं वो जल्दी एब्सॉर्ब हो जाता है, वो अंदर में ग्रहण हो जाता है, धारण हो जाता है। जैसे ही दिन उगता है और प्रवृत्तियां शुरू हो जाती हैं, इंफॉर्मेशन बुद्धि में छपना शुरू हो जाता है, तो फिर हम वही ज्ञान सुनेंगे तो भी इतना गहरा प्रभाव हम नहीं ले सकेंगे। तो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से 8 बजे का जो समय है वो हम समझते हैं यहाँ कि ये सेल्फ एम्पावरमेंट का समय है। वो समय अब तक हम अधिकतर सोने में या नहाने धोने में खर्च करते रहे हैं। तो अगर हम अपने रूटीन में चेंज लाएं कि रात को थोड़ा जल्दी हम सो जाएं, हम भी यहाँ 10:30 सोते हैं और सुबह 3:30-4 बजे उठते हैं, फिर हम दिन में 1-1.5 घंटा आराम करते हैं, पर रात को अगर हम जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें, तो ये समय अर्ली मॉर्निंग का हम खुद के लिए दे सकते हैं और सत्य ज्ञान की बातें हम सुने, उस प्रभु पिता से मिलन मनाए, श्रेष्ठ चिंतन में रहे, तो सुबह सुबह हमारी एक शुद्ध और शक्तिशाली सकारात्मक मनोस्थिति का निर्माण होता है और मन और बुद्धि पर ज्ञान और योग का लेयर आने से फिर आप अनुभव करेंगे कि दुनिया में कितनी भी ऊपर नीचाई आप देखेंगे सुनेंगे, लेकिन उसकी नेगेटिव इन्फ्लुएंस हमारे पर नहीं पड़ेगी। तो हमारा आध्यात्मिक रूपांतरण माना हमें अपने विचारों में, वृत्ति में, भावों में, भावनाओं में, वाणी में, कर्म में, व्यवहार में परिवर्तन लाना है। तो ये लेवल ऑफ चेंज बताए हैं कि एक है फर्स्ट बिहेवियरल लेवल, व्यवहारिक लेवल पर कई बार हम चेंज करते हैं। मान लो एक ही डिपार्टमेंट में 2-4 व्यक्ति मिलके काम करते हैं, उसमें 2 की आपस में अनबन होती है, झगड़ा होता है, डिस्टर्बेंस होता है, तो जब उनको सावधानी दी जाती है कि भाई अब आप आपस में झगड़ेंगे नहीं तो ये कदम लिए जाएंगे, तो वो अपने टेम्पररी बिहेवियर में चेंज करते हैं। माना इससे उनके एक्शन में, कर्म में सुधार होता है, पर वो कहा गया इसलिए किया। जब तक खुद की समझ में, माना नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल लेवल, माना जब तक हम अपनी अंडरस्टैंडिंग में चेंज नहीं करते हैं तो झगड़ेंगे नहीं वो व्यक्ति, लेकिन 1-2 को समझ नहीं सकेंगे। अभी भी मन में 1-2 के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, इसलिए आंतरिक जो 1-2 के लिए व्यवहार है वो ठीक नहीं रहेगा। तो हमें नेक्स्ट लेवल की, अपना बौद्धिक लेवल से भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि किसी ने कहा इसलिए नहीं, लेकिन उस बात को मुझे अंडरस्टैंड करके चेंज लाना है। तो जब हमारी समझ में चेंज आता है, उसके बाद भी आपने देखा कि कई बार हम समझते हैं कि भाई सही बात है, वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से हमारा वायुमंडल बिगड़ता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, तो समझ बदल लेते हैं, पर उनसे भी सूक्ष्म लेवल है, वो है इमोशनल लेवल। जब तक उस व्यक्ति के प्रति भाव नहीं बदलता है, समझ गए कि भाई हम जो कर रहे हैं वो रॉन्ग है, परंतु फिर भी हमें उसके लिए ऊंचा शुभ भाव नहीं बनता है, तो हमारी फीलिंग्स में चेंज नहीं आता है। उसके प्रति जो हमारी भावना रहेगी वो शुभ नहीं रहेगी, क्योंकि उस आत्मा के प्रति अभी भी हमारा श्रेष्ठ भाव नहीं है। तो इमोशनल लेवल पर भी अपना चेंज करना जरूरी है, और उसके लिए जो एकदम सटल लेवल है वो है कॉन्शियसनेस लेवल। जब तक हम अपनी स्मृति में चेंज नहीं करते हैं, तब तक हमारे थिंकिंग थॉट्स में परिवर्तन नहीं आता है। उस व्यक्ति के प्रति हमारी स्मृति श्रेष्ठ हो, यथार्थ हो, तो हमारे थॉट्स में थिंकिंग में चेंज आएगा। इसलिए आध्यात्मिकता जो है वो इस सटल लेवल कॉन्शियसनेस लेवल पर वर्क करता है, क्योंकि परमात्म ज्ञान से जब सारी बेसिक सत्यता को हम समझ लेते हैं, तो फिर हमारा हर आत्मा के प्रति जो स्मृति है वो यथार्थ बनती जाती है। तो हर लेवल, कहने का भावार्थ ये है कि आज के एजुकेशन से सोफिस्टिकेशन आता है कि हम अपने शिष्टाचार में, बाह्याचार में तो परिवर्तन लाते हैं, लेकिन आंतरिक परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हमारी पर्सनालिटी जो है वो ड्यूअल पर्सनालिटी बनती जाती है ना। वे घर में समझो आज होलीडे है, आराम से आप बैठे हैं, कहीं होलीडे मनाने के मूड में है, कहीं जाने का प्लानिंग है, और अचानक कोई मेहमान आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? मुख से तो हम कहते हैं कि आइए आइए, हमें बहुत खुशी हुई आप आए, पर अंदर से हम क्या सोचते कि ये कहां से आ गए, सारा हमारा प्लानिंग फेल हो गया। तो अंदर का भाव ठीक नहीं है। हम बाह्य शब्दों से तो ठीक बोलना सीखे हैं, पर अंदर के भाव ठीक नहीं है तो नेचुरली हमारी फीलिंग्स जो है वो क्रश होती हैं, और वो ड्यूअल पर्सनालिटी ही वास्तव में हमारे तनाव का कारण बनता है। तो यहां बताया है कि मेटामॉर्फोसिस माना हमें अपनी वृत्तियों में जड़ से, रूट से चेंज लाना है। सिर्फ बाह्य नहीं कि शब्द मीठा बना दे, है ना। जैसे हम कोई व्यक्ति की बहुत अच्छी आवभगत करते हैं, उसकी खातिरी करते हैं, और फिर हम कहते हैं आपस में कि भाई अभी उनकी सत्कार करो, आवभगत करो, पर क्योंकि हमें उनसे बहुत काम निकलवाना है। तो एक अंदर बाहर एक नहीं हुआ, साफ नहीं हुआ। इसलिए ये रूपांतरण शब्द जो है वास्तव में वो वृत्ति परिवर्तन की बात है। तो यहां बताया है कि जब हम अपना आंतरिक परिवर्तन करते हैं तो हम अपने अंदर झांकते हैं। जब भी कोई समस्या आती है तो हम उनका सॉल्यूशन बाहर ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं, किससे मिले, क्या करें, क्या चेंज करें, ये ठीक हो जाए, तो हम उसका सॉल्यूशन बाहर ढूंढते हैं। परंतु जीवन में कई परिस्थितियों का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे अपने कर्म होते हैं, हमारे अपने संस्कार स्वभाव होते हैं। तो जब तक हम अपना आंतरिक परिवर्तन नहीं करते हैं, वो समस्या फिर नया रूप लेकर के आती ही रहती है। इसलिए आध्यात्मिकता में हमें अभ्यास हो जाता है कि रोज हम मन को अंतर्मुखी बनाते हैं, स्वचिंतन करते हैं, स्वदर्शन करते हैं। इस अभ्यास से हर बात में हमें पहले खुद को देखने की आदत बन जाती है कि ये जो परिस्थिति मेरे सामने आई है, कहीं उसका मैं तो कारण नहीं हूं, या कितने परसेंटेज में मैं खुद कारण हूं। तो हर बात में जब हम पहले स्वदर्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो हमें कई बार अपने आप से ही सॉल्यूशन मिलता है। एक कार्यक्रम यहां हुआ था और उसमें आपकी तरह ही अलग अलग कंपनीज के मैनेजर्स वगैरह आए थे और आपके जैसा ही उनका स्केड्यूल था, एक के बाद एक सेशंस थे। तो उसमें से एक व्यक्ति ने खड़े होकर हमें कहा एक सेशन में कि आपकी तरह मेरे पास भी बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स हैं, मैं भी बहुत कुछ बता सकता हूं, पर मेरी कंप्लेन है कि लोग मुझे सुनते ही नहीं हैं। तो हम लोगों ने उनको कहा कि नेक्स्ट सेशन में आप हमें भी नहीं सुनिए और आप कैंपस में गार्डन में जाके एक घंटा साइलेंस वॉक करके आइए और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, शांति से सोचिए कि क्यों लोग आपको नहीं सुनते हैं। तो जब थर्ड सेशन में वो आए तो थोड़ा खुश नजर आ रहे थे। हम लोगों ने उनसे पूछा कि आपको अपनी कंप्लेन का कोई सॉल्यूशन मिला, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं एक घंटा साइलेंस में वॉक किया और मैंने अपना स्वदर्शन किया तो मुझे समझ में आया कि लोग मुझे क्यों नहीं सुनते हैं, क्योंकि मैं ही किसी की नहीं सुनता। मुझे अपनी बौद्धिकता, मुझे अपने थॉट्स, आइडियाज का इतना अभिमान है कि मैं ही नहीं किसी की सुनता हूं तो मेरी कौन सुनेगा, है ना। तो कई बार हमें प्रॉब्लम बाह्य है पर सॉल्यूशन अंदर से मिलता है कि अगर हम अपने थोड़े एटीट्यूड में चेंज कर ले तो वो परिस्थिति को हम बहुत जल्दी मिटा सकते हैं या पार कर सकते हैं। दूसरी बात कि कम समय में हमें सुंदर रिजल्ट मिलता है, हमें बहुत लंबा टाइम नहीं देना पड़ता है क्योंकि हम अपने आप को ही चेंज कर लेते हैं। और चेंज करने का मतलब अक्सर हम क्या सोचते हैं, भई आप अपने में परिवर्तन करो, तो हम ये समझते हैं कि मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा, है ना, कुछ त्याग करना पड़ेगा। परंतु यहां परिवर्तन का मतलब है कि हम कुछ और गुण धारण कर ले, और शक्तियां अपने आप में धारण कर ले और अपने आप में शांति भर ले, हम अपना अंदर का लेवल ऊंचा उठा लें। तो वही बातें जो हमें भारी लगती हैं या समस्या लगती है, फिर वो हमें कॉमन महसूस होती है। तो यहां जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात है वो है कि अपने अंदर कुछ गुण और शक्तियों को और कुछ राइट अंडरस्टैंडिंग को हम धारण कर लें, और इससे सिचुएशन पर हमें एक कंट्रोल महसूस होगा। नहीं तो कई बार हम सोचते हैं कि भाई अब ये मेरे हाथ की बात नहीं रही है, ये मेरा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। परंतु खुद में जब हम संयम रखते हैं और अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, हमारे थॉट्स पर, फीलिंग्स पर, इमोशंस पर, हमारे बिहेवियर पर हमारा कंट्रोल रहता है, तो सिचुएशन को हम आसानी से कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये एटीट्यूडनल चेंज की बात है। अब सॉल्यूशंस के प्रति हमारा एटीट्यूड क्या है? तो आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि कोई भी कारण से कोई भी कार्य में हम फेल होते हैं, सफल नहीं होते हैं, तो उस समय हम घबरा जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो कंफ्यूजन या भय रखने के बजाय अगर हम अपने अंदर खुद में आत्मविश्वास रखें और थोड़ा सा धैर्य हम धारण करें, तो हमें जल्दी सॉल्यूशन हम सहज रीति से ला सकते हैं। जीवन है माना, दोनों सिचुएशन का फेस तो करना ही होता है। हर बात में व्यक्ति सदा सफल ही हो ऐसा तो नहीं हो सकता है, कभी न कभी फेलियर हाथ तो लगता ही है। तो उस समय घबराएं नहीं, मुंझे नहीं, पर अपने आप में धीरज, शांति, हिम्मत रखते हैं। तो देखा गया है कि हम जब शांत चित्त से सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें वो रूट कॉज समझ में आ जाता है, वहां ही माइंड फोकस होता है और हम जल्दी उसे पार करने का रास्ता ढूंढ निकालते हैं। तो कहते हैं ना कि जितनी समस्या बड़ी हो उतनी ही गहरी शांत मन की स्थिति चाहिए, तो हमें सॉल्यूशन खुद को ही नजर आ जाता है। तो वहां अब टाइम पर मन शांत ऐसे तो नहीं रहेगा, रोज आप शांत मनोस्थिति में स्थित होने का अभ्यास करेंगे तो परिस्थिति आने पर, समय आने पर मन शांत रहेगा। वैसे लोग कहते हैं ना कि वे नॉर्मली मैं शांति से ही बात करता हूं, पर उसने बोला ऐसा ना कि गुस्सा आ गया, तो समय पर शांति क्यों नहीं रही? क्योंकि हमने रोज वो लेसन पक्का नहीं किया। तो आपने देखा यहां मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हम साइलेंस में बैठकर हमारे अपने स्वरूप की जो रियलिटी है वो हम खुद ही खुद को रिवाइज करा के रियलाइज कराते हैं, पाठ पक्का कराते हैं कि मैं शांत आत्मा हूं, मेरी ओरिजिनल नेचर शांति है। अगर ये अभ्यास, मैं शांति में कंफर्टेबल रहती हूं, अगर ये रोज हम रिवीजन करते हैं तो नेचुरली टाइम पर हमारी मनोस्थिति शांत रहेगी। डिसीजंस के प्रति हमारा एटीट्यूड किस प्रकार का रहे, तो परिस्थिति के प्रति जो हमें डिसीजन लेना है वो जल्दबाजी में नहीं लेना है। जल्दबाजी में जो हम करते हैं वो कई बार रॉन्ग डिसीजन हम ले लेते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि पोस्टपोन करिए। उसने मुझे दो शब्द सुनाए तो मैं तुरंत निर्णय कर लूं कि तो मैं चार सुना दूं, नहीं, थोड़ा हम एक क्षण अंदर जाकर सोचें तो एक राइट डिसीजन हमारे अंदर आएगा कि मुझे अगर केयरफुली इवैल्यूएटेड अगर एक श्रेष्ठ और शुभ निर्णय लेना है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। तो जल्दबाजी नहीं, लेकिन अपने स्वरूप में, शांत स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर एक क्षण अंतर्मुखी बनकर फिर हम वो निर्णय लें। धन के प्रति हमारा एटीट्यूड किस प्रकार का हो, तो हमें अपने एटीट्यूड में चेंज करना है। हमें अपने जीवन निर्वाह के लिए कमाना तो है ही। आध्यात्मिकता ये नहीं सिखाती है कि पैसे को हाथ नहीं लगाओ। कई समझते हैं धन की माया है, धन माया नहीं है, संपत्ति माया नहीं है, परंतु हमारे अंदर जो लोभ लालच आता है वास्तव में वो माया है। इसलिए हम वो लोभी वृत्ति को चेंज करें कि अगर हम पैसा इकट्ठा करते जाते हैं तो हमें सदा भय रहता है और लोभ बढ़ता ही जाता है। आप खुद भी देखते होंगे समाज में कि जितना भी इकट्ठा करते हैं इंसान को कम ही लगता है, और अंदर एक चिंता भी खाती है, भय भी लगता है कि कभी भी हम पकड़ा जाएंगे। इससे तो अगर हम उस धन को योग्य दिशा में उपयोग में लाएं तो वो सेफ भी होता है और बेनिफिट भी हमें इससे प्राप्त होता है। तो ये हमारा एटीट्यूड धन के प्रति बदलना चाहिए कि सिर्फ इकट्ठा नहीं करना है, हम अपने इष्ट देवी देवताओं को भी देखें। भारत की संस्कृति, भारत की भूमि तो देव भूमि है। देवी देवता का अर्थ ही है, वो कोई काल्पनिक और चमत्कारिक व्यक्तियों की बात नहीं है, पर देवी और देवता मीन्स देने वाले, देने वाले, दाता। और इसलिए आप देखिए हर देवी देवता के हाथ कैसे दिखाते हैं, दाता, वरदाता। अगर उसके विपरीत हम पकड़ते हैं, जमा करते जाते हैं, तो वो धन हमारे लिए ही भय और चिंता का कारण बन जाता है और हमारी लोभ वृत्ति का कोई अंत नहीं आता। इसके बजाय सही दिशा में, सही कार्य में अगर हम धन को लगाते हैं तो वो सेफ भी हो जाता है और उससे हमारा खुद का, परिवार का, समाज का, देश का भी कल्याण में वो यूज हो जाता है। जो हमारा प्रोफेशन है, बिजनेस है या प्रोफेशन है, उसके उसकी सिचुएशन के प्रति हमारा एटीट्यूड क्या हो, कि अगर हमारा धंधा अच्छा है, बहुत अच्छा आप कमा रहे हैं, तो आप कंटेंटेड रहिए, एक आंतरिक तृप्ति हो, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, अंदर से असंतुष्ट ही रहे, कितना भी हो तो भी हमारी भूख कम ही ना हो, ऐसे नहीं, हमारा कंटेंटेड हो कि जो है वो मुझे यथार्थ मिला हुआ है। बल हमें महत्वाकांक्षा हो और पाने के लिए हम पुरुषार्थ करें, पर जो पाया है, जो है, उसका भी तो हम आनंद लें ना, उससे भी तो हम सेटिस्फाई रहे। और अगर हमारा बिजनेस मंद चल रहा है, स्लैक्स है, तो उस सिचुएशन में हम अपने आप में विजडम धारण करें, अपने आप में विजडम धारण करें, उस समय दुखी ना हो जाएं, अधीर्य ना हो जाएं, गलत निर्णय ना कर लें, लेकिन उस परिस्थिति में हम ऐसी समझदारी रख करके ऊपर उठने का प्रयास करें। अप्स एंड डाउन्स हर क्षेत्र में आते हैं, हर एक के सामने आते, ऐसा नहीं है जब हमारे सामने सिचुएशन आती है तो अक्सर हम क्या सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिले हैं, मेरे भाग्य में ही ऐसा क्यों लिखा है। पर अगर थोड़ा हम देखें तो ये सिर्फ हमारे सामने नहीं है, हर किसी के सामने ऐसी परिस्थिति आती है, किसी के आगे आ जाई है, किसी के आगे बाद में आती है, हर किसी व्यक्ति के आगे ये बातें आती है और हर कोई ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं। तो वहां हम अपने आप में विजडम रखें कि ये जो परिस्थिति आई है वो आज नहीं कल बदल जाएगी। कहते हैं ना, भाई दुख आया है ये भी नहीं रहेगा, सुख आया है वो भी नहीं रहेगा। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, ओनली चेंज इज परमानेंट। तो थोड़ा सा धैर्य रखे, स्थिरता रखे, हिम्मत रखे तो ये बदल जाएगा। हम लोग अमेरिका में गए थे, पोर्टलैंड में, तो वहां एक सिटी में हम गए तो वो लोग बता रहे थे, क्योंकि खुद हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा कि अभी अभी खुला मौसम था, 5 मिनट में मतलब बारिश आ गई, फिर 5 मिनट में बर्फ बारी शुरू हो गई। तो कहते यहां जब भी कोई आते हैं और कहते हैं कि ये ठीक नहीं है आज का वातावरण, तो हम कहते 5 मिनट धीरज रखो, बदल जाएगा। तो इस प्रकार जीवन में भी बातें बदलती रहती हैं। हम अपनी स्थिति ना बदल दें, हम अपसेट ना हो जाएं, पर हम अपनी स्वस्थिति को शक्तिशाली बना के समझदारी से स्थिरता रखते हैं तो अपने आप वो सिचुएशन भी चेंज हो जाते हैं। तो जो मेटामॉर्फोसिस की बात है वो ये है कि सेल्फ में क्या चेंज लाना है, ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट से रिप्लेस करना है। आज अभिमान है जाति का, भाषा का, प्रांत का, पोजीशन का, है ना। आप देखें कोई ना कोई ईगो हमारे में रहता है, आप क्या मुझे समझते हैं, हम भी ऐसे हैं, हमारे साथ आप कैसे ऐसी बात कर सकते। तो ईगो को हम रिप्लेस करें सेल्फ रिस्पेक्ट से। तो जब हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट जगा हुआ है तो कोई अगर 2 शब्द गलत कह देगा तो भी मुझे अपमान फील नहीं होगा, क्योंकि मुझे अनुभव होगा कि मैं अपने आप में ही महान हूं, किसी के कहने से कोई मेरा स्वमान डाउन नहीं हो जाता है। तो अपना आत्म सम्मान जगाएं, अभिमान में न रहे परंतु अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हम डेवलप करें कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम ओरिजिनली शुद्ध है, सत्य है, हम अपनी इस रियालिटी के कॉन्शियस में नहीं, जो फॉल्स ईगो की बातें हैं वो नहीं रखें। फिर फ्यूचर के लिए आशावाद हो, भविष्य हमारे वर्तमान का ही रिजल्ट है, तो वर्तमान तो हमारे हाथ में है ना, तो भविष्य के लिए आशावादी रहे, जो बीत चुका है उससे लेसन सीखे, सबक सीखे। सिर्फ ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उसने ऐसा मेरे साथ किया, वो याद करके पास्ट की कड़वाहट को याद कर वर्तमान को नष्ट हम नहीं करें, लेकिन पास्ट में जो कुछ हुआ उसको ऑब्जर्व कर लेसन सीखें और हम आगे बढ़ें। तो पास्ट से सीखना है और वर्तमान में हमें सदा उन्नति करनी है, नया नया नया। जीवन अपने आप में एक बहुत लंबा लेसन है और हमें अंत तक सीखना है, समझना है, आगे बढ़ना है। तो अगर हम अपने दिल दिमाग के द्वार खुले रखते हैं और नया 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 सीखते जाते हैं तो भविष्य भी अच्छा बनता है, पास्ट की बातें भी परेशान नहीं करती हैं और वर्तमान का सुख, आनंद और उन्नति हम अनुभव कर सकते हैं। रिलेशंस में संबंध तो हम निभाते हैं, पर हमारी एक दो के प्रति भावना क्या है, भावना क्या है? वे समाज के भय से, जरूरत के हिसाब से हम निभा तो लेते हैं, पर अंदर से हम सुखी क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम भावनाएं नहीं बदलते हैं। वैरायटी नेचर तो हर आत्मा का है। अगर मैं किसी के लिए सोचती हूं कि ये बड़ा विचित्र है, तो मेरे लिए भी तो कोई सोच सकता है ना कि ये बड़ा विचित्र है, क्योंकि हरेक के वैरायटी स्वभाव संस्कार है। तो उसको अंडरस्टैंड करें और हम अपनी तरफ से शुभ भावना रखें, तो हम अपने संबंधों के क्लैश का दुख अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन शुभ भावना से हम अपने आप को ठीक रख सकेंगे। रोल्स, जो रोल आप प्ले करते हैं, घर में आप पिता है, आप अपने कार्यक्षेत्र में एम्प्लॉई हैं या बॉस हैं, समाज में आप एक नागरिक के रूप में हैं, आप कितने रोल्स प्ले करते हैं? कहीं आप पिता है, कहीं आप पति है, कहीं आप बेटा है, कितने रोल्स हम प्ले करते हैं? तो अपना हर रोल हम अच्छी रीति प्ले करें तो हमें इसमें आनंद भी आएगा और हमारे से संबंधित जो लोग हैं उनको भी हमसे कुछ नवीनता, रचनात्मकता प्राप्त होगी। नॉलेज एक वेल्थ है, पर ज्ञान है पर आत्मा में शक्ति नहीं है तो आचरण में नहीं आएगा। आप पंडित बनेंगे, विद्वान बनेंगे, पर आप उस ज्ञान का आचरण, वो स्वरूप नहीं बनेंगे। इसलिए कहते हैं ना, भी हम समझते हैं पर कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो विल पावर नहीं है, हमारे में दृढ़ वो इच्छा शक्ति नहीं है। और ये जो आत्मा में शक्ति चाहिए, बस वही तो हमें मेडिटेशन से मिलती है, परमात्मा की याद से मिलती है। वो ऑलमाइटी है, उनसे कनेक्ट होते हैं, उनको याद करते हैं तो हम एम्पावर होते हैं और इससे हमारे में सेल्फ कंट्रोलिंग पावर आता है। आपके पास पैसा है पर विजडम नहीं है तो वेस्ट हो जाएगा, मिसयूज हो जाएगा, है ना? भाई माँ बाप करोड़ों की प्रॉपर्टी देके गए पर बच्चा सेंसिबल नहीं है तो गलत आदतों में, गलत मार्ग पर वेस्ट कर देता है और वो करोड़पति रोड़पति हो जाता है। तो विजडम, धन के साथ समझदारी भी चाहिए। टाइम है पर एक्यूरेसी नहीं है तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है। कि कैसे हमें एक्यूरेट चलना है, हम केयरलेस रहते हैं, आलसी रहते हैं और कितनी बातों में टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो जबकि हम कहते हैं टाइम इज मनी बट मोर देन मनी, तो हमें उनको बहुत एक्यूरेसी से यूज करना है। और थॉट्स, हर कोई सोचता है, हर सेकंड विचार चलता है, पर अगर हमारे विचारों में स्थिरता नहीं है, अक्सर यही कहते हैं मन भटकता है, हम फोकस नहीं हो पाते, तो इतना वैल्यूएबल थॉट जहां सारी क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है, अगर हम उस मन को व्यर्थ विचारों में व्यर्थ कर देंगे तो इसलिए स्टेबिलिटी, विवरिंग माइंड नहीं, हमारे में शांति और स्थिरता। तो मेडिटेशन मन को शांत शुद्ध बनाता है, तो इससे क्रिएटिविटी आती है, क्रिएटिव आइडिया टच होता है। बोलते हैं हम पर मधुरता नहीं है हमारे शब्दों में तो हमारा बोलना व्यर्थ हो जाता है। वही शब्द अगर हम प्यार से कहें, रिस्पेक्ट से कहें, शुभ भावना से कहें तो वो व्यक्ति को असर करता है, नहीं तो हमारा बोलना व्यर्थ हो जाता है। हम खुश हो जाते हैं कि मैंने चार सुना दिया, पर वो सुनाया पर कुछ काम तो हुआ नहीं वहां, क्योंकि वो ग्रहण नहीं हुआ ना। आप प्यार से बात बताएंगे तो वो व्यक्ति समझेगा, स्वीकार करेगा। इसलिए शब्दों में मधुरता और कर्म हमारे सम्मान युक्त हो, हमारा व्यवहार और समय को आप पहचान रहे हैं कि बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर आत्मा को रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट देना माना उस आत्मा की वैल्यू करना है, उससे महसूस हो कि मेरा भी इस संसार में कुछ महत्व है, तो इससे वो आत्मा और उत्साहित तो होती है। इसलिए कर्म व्यवहार में अगर ये सम्मान और सत्कार देने की वैल्यू है हमारे अंदर, तो हमारी हर वेल्थ हम सफल कर सकेंगे। तो ये हमें अपने आप में चेंज लाना है। शुभ भावना, ये मेडिटेशन से जब हम परमात्मा का प्यार, ज्ञान, शांति भरते हैं, तो नेचुरली हमारा मन भी प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, शुभ बनता है। तो लोगों के प्रति हमारी शुभ भावना हो कि इस संसार में, कलयुग के अंत में भी ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें कोई एक अच्छाई ना हो। हर एक में कोई ना कोई अच्छाई होती ही है, तो हम उस अच्छाई को देखें और उस अच्छाई के कारण उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखें। हम उनकी कमजोरी देखते हैं, फिर हम घृणा करते हैं, गुस्सा करते हैं और अभद्र व्यवहार करते हैं, नहीं। उनकी एक अच्छाई को अगर आप इंपॉर्टेंस देंगे और उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे, तो वो एक अच्छाई भी उसकी डेवलप हो जाएगी जो और अच्छाइयों को ले आएंगे। तो लोगों के प्रति इस प्रकार सोच के शुभ भावना रखें। सिचुएशन जो आती है, वो हर सिचुएशन हमें सिखाती है, जगाती है, है ना। जब बात आती है तब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि बड़ा भारी नुकसान हो गया, इसने मुझे धोखा दे दिया, मेरे साथ बेवफाई की। पर जब हम शांत हो जाते हैं, फिर समझ में आता है और फिर हम कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, अगर अभी ऐसा नहीं करता तो मैं तो अंधेरे में ही रहती और पता नहीं और कितना नुकसान हो जाता। तो हर परिस्थिति हमें कोई लेसन सिखाती है, कोई सबक सिखाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि हर परिस्थिति हमें पाठ सिखाती है, और अगर वो सीखते हैं तो वही परिस्थिति हमें आगे बढ़ाने निमित्त बन जाती है। बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में आप ट्रस्टी बन कर रहे हैं, तो आप भारी नहीं होंगे, आपकी नीति बिगड़ेगी नहीं कि वो मालिक है, हम ट्रस्टी हैं। हमें उनकी सिखाई हुई सच्चाइयों अनुसार कर्म करना है, तो हम हल्के भी रहेंगे और उन्नति भी करेंगे। और खुद के लिए भी रोज ये पाठ पक्का करें, रियलिटी है कि मैं आत्मा, शांत आत्मा। इसलिए हमें शांति चाहिए। हम क्यों शांति चाहते हैं? क्योंकि ओरिजिनली हम शांत है। तो ये सत्यता खुद के लिए स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि मैं कहता हूं ना मैं क्रोधी हूं, मैं कहता हूं ना मेरा नेचर ऐसा है, मुझे गुस्सा आ जाता है। अब आप यही सोचेंगे और यही बोलेंगे तो आप वही करेंगे। इसलिए अपना माइंडसेट चेंज करिए कि मैं शांत आत्मा। अगर ये अवेयरनेस आएगी तो कोई कितना भी गुस्सा करेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो ये कॉन्शियसनेस, ये स्मृति कि आई एम, मैं शांत आत्मा हूं, इसलिए मुझे शांति चाहिए, इसलिए मुझे शांति से हर कर्म व्यवहार करना है, ताकि मैं शांति के गुण को सस्टेन कर सकूं। मैं हूं ही शांत, मुझे शांत बनना है, मुझे गुस्से पर कंट्रोल लाना है। आप है ही शांत, पर आप भूल गए हैं, ये अवेयरनेस आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप समझते हैं कि कहीं बाहर से शांति अंदर आएगी। हिल स्टेशन पर जाए शांति आएगी, कहीं घूम के आए शांत नहीं। आप अपनी स्थिति को चेंज करिए कि मैं शांत आत्मा हूं। तो हमारा हमेशा चित्र में बताया है कि हमारा बुद्धि का फोकस, सोर्स ऑफ वैल्यूज परमात्मा के प्रति रहे। जैसे सूर्य के प्रति मुख रखते हैं तो परछाई अपने आप पीछे पीछे आती है, पर सूर्य से आप पीठ कर देते हैं तो नहीं, परछाई आपसे आगे चलती है। तो कहते हैं ना कि व्यक्ति पहले खुद धन के पीछे दौड़ता है, पर जब व्यक्ति महान बन जाती है तो धन उसके पीछे दौड़ता है। तो हम महान बन जाएं, और उसके लिए उस सोर्स ऑफ वैल्यूज वेल्थ परमात्मा के प्रति अगर मैं अभिमुख हूं, योगी हूं, तो अपने आप भौतिकता मेरे पीछे आती ही है। हमें लगेगा कि पहले हमें त्याग करना पड़ता है, पर वास्तव में हम लोगों का अनुभव यह है कि ये त्याग नहीं है, भाग्य मिलता है। भगवान के हम बनते हैं तो हमें और ऊंचा भाग्य बनता है। उससे प्यार है तो सब कुछ हमारे चरणों में आता है। तो ये है कि हम आध्यात्मिक रूप से अपना रूपांतरण करें, और ये अपना अमूल चेंज हम लाना चाहते हैं तो पहला है विल, कि मुझे अपने आप में चेंज लाना है। आई वॉन्ट टू चेंज। और फोकस, खुद पर फोकस करिए कि मुझे अपने आप में क्या परिवर्तन लाना है, अपने में मुझे क्या सुधार लाना है। व्हाट टू चेंज एंड व्हाई टू चेंज, ये नॉलेज क्लियर अपने आप में रखिए। विल, वॉन्ट टू चेंज, एंड देन हाउ टू चेंज, हम अपने में वो कैपेबिलिटी डेवलप करें ताकि एक अच्छे तरीके से हम अपने आप को चेंज कर सकें। तो यही शुभ भावना हम सभी आत्माओं के लिए रखते हैं कि जैसे परमात्मा के ज्ञान से और उनके साथ के संबंध से हम अपने आप को बदल सके हैं, और आज भी उस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं कि हमें अपनी आंतरिक वृत्ति से, स्मृति से, विचार से, वाइब्रेशन से, भाव से, भावना से टोटल चेंज होना है, सिर्फ टेम्पररी बाह्य ऊपरी ऊपरी नहीं। तो परमात्मा हर आत्मा का साथी है, परमात्मा का ज्ञान हर आत्मा के लिए है। आप भी अगर इस प्रकार का स्वयं में परिवर्तन करेंगे तो हमें अपनी पूरी दुनिया, कहते हैं हर स्टार में अपनी दुनिया है, हर आत्मा का अपना संसार है, तो आपका अपना संसार अवश्य बदल जाएगा, और अल्टीमेट हम पूरी दुनिया को भी बदल सकेंगे। ओम शांति।